श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। स्कंद 7 अध्याय 1 श्लोक संख्या 1 से शुरू होगी। श्री राजा उवाच। महाराज परीक्षित ने कहा, समान प्रिय प्रिय श्रुत मित्र ब्राह्मण हे ब्राह्मण सुखदेव भूतानाम समस्त जीवों के भगवान परमेश्वर विष्णु स्वयं इंद्रस्य इंद्र के अर्थे लाभ के लिए कथा कैसे दैत्या असुरों को अवधि मारा विषम पक्षपात यथा मानो। श्री राजा उवाच। सम प्रिय श्रुत ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्य अर्थे कथं दैत्यान् अवधीत विषमायता भाषांतर और भावार्थ भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु सबों के शुभचिंतक होने के कारण हर एक को समान रूप से अत्यधिक प्रिय है, तो फिर उन्होंने किस तरह एक साधारण मनुष्य की भांति इंद्र का पक्षपात किया और उसके शत्रुओं का वध किया। सबों के प्रति समभाव रखने वाला व्यक्ति कुछ लोगों की तरह किसी के प्रति पक्षपात करेगा और अन्यों के प्रति शत्रुभाव रखेगा? प्रश्न। तो यहाँ राजा परीक्षित सुख मुनि को सुंदर प्रश्न करते हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके शुभेच्छक हैं, शुभ चिंतक हैं और सब में समभाव रखते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न देशेऽस्ति न प्रियः। मैं सब में समभाव रखता हूँ, मेरा कोई प्रिय नहीं, द्वेष पात्र नहीं। कुंती महारानी कहती है, समम चरन्ति सर्वत्र। हे कृष्ण, आप सब में समभाव रखते हो। तो परीक्षित महाराज को यहाँ शंका हुई, श्री कृष्ण सत्य शुभ चिंतक होते हुए यहाँ इंद्र का पक्ष ले रहे हैं और शत्रुओं का वध किया। सबों के प्रति संभाव रखने वाला व्यक्ति कुछ लोगों की तरह किसी के प्रति पक्षपात करेगा और अन्यों के प्रति शत्रुभाव रखेगा? सुंदर सवाल है। तो ये अध्याय में सारा अध्याय इन प्रश्न का जवाब है, पहला अध्याय। आगे कहते हैं, नहीं अस्य अर्थ सुरगणै साक्षात् निःश्रेय आत्मनः नैव असुरेभ्यो विद्वेषः न उद्वेगः च अगुणस्य हि। भगवान विष्णु साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर तथा समस्त आनंद के आगार हैं। अतएव उन्हें देवताओं का पक्ष ग्रहण करने से क्या लाभ मिलेगा? इस प्रकार उनका कौन सा स्वार्थ सिद्ध होगा? जब भगवान दिव्य हैं, तो फिर उन्हें असुरों से भय कैसा और उनसे ईर्ष्या कैसी? और तीसरा श्लोक भी सवाल के रूप में है। तो भगवान विष्णु कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम और आनंद के आगार, तो पक्षपात करने से उनको लाभ क्या? वो अपने आप में तुष्ट है, पुष्ट है, आत्मा राम है, आत्मकाम है। उनको बाहर का कोई भी विषय सुख या दुख नहीं दे सकता। तो फिर वो असुरों से भय क्यों रखते हैं, या तो असुरों से द्वेष क्यों रखते हैं? तो ये परीक्षित महाराज के सवाल है। इति न सुमहाभाग नारायण गुणान प्रति संशय सुमहाजात तत् भवान चेतुम अर्हति। हे सौभाग्यशाली एवं विद्वान ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी, यह अत्यंत संदेहस्पद है कि नारायण पक्षपात पूर्ण है या निष्पक्ष है। कृपया निश्चित साक्ष्य में द्वारा मेरे इस संदेह को दूर करें कि नारायण सर्वदा पक्षपात रहित तथा सबों के प्रति सम है। तो ये सवाल है। भगवान किसी का पक्ष नहीं करते, और यहाँ देखा जाता है कि वो पक्ष देवताओं का पक्ष लेते हैं। तो यहाँ से जवाब शुरू है। श्री ऋषि उवाच साधु पृष्ठ महाराज हरे चरितम अद्भुतम यत भागवत महात्म्यम भगवत भक्ति वर्धनम गीयते परमं पुण्यम ऋषिभिः नारदादिभिः त्वा कृष्णाय मुने कथयिष्ये हरे कथा। तो सुख मुनि ने कहा, हे राजन, आपने मुझसे अति श्रेष्ठ प्रश्न किया। भगवान के कार्यकलापों के संबंध में कथाएं जिनमें उनके भक्तों की भी यश का वर्णन होता है, भक्तों को अत्यंत भाने वाली है। भगवान श्री कृष्ण की कथा उनके भक्तों के संबंध में, उनके भक्तों के साथ उनके कार्यकलाप की कथा का यश गान करना अत्यंत आनंददायक है। और ऐसी अद्भुत कथाएं सदैव भौतिकतावादी जीवन शैली के कष्टों का निवारण करने वाली है, अर्थात तपित जीवात्माओं का जीवन है। तप्त जीवनम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभीडितम कलमशाप तव कथामृतम। ऐसी कथाएं सदैव भौतिकतावादी जीवन शैली के कष्टों को निवारण करने वाली होती है। अतएव नारद जैसे मुनि श्रीमद् भागवत के विषय में सदैव उपदेश देते रहते हैं, क्योंकि इससे मनुष्य को भगवान के अद्भुत कार्यकलापों के श्रवण और कीर्तन की सुविधा प्राप्त होती है। अब मैं श्रील व्यासदेव को सादर प्रणाम करके भगवान हरि के कार्यकलापों से संबंधित कथाओं का वर्णन प्रारंभ करता हूँ। तो भगवान विषम जैसे लगते हैं यहाँ, तो विषम नहीं है। उनकी कथाएं, उनके कार्यकलाप, भक्तों के साथ प्रणय लीलाएं, ये सब सुमधुर है। और ये कथाएं तब हो सकती हैं जब भक्त इस भौतिक संसार में प्रचार के लिए आते हैं। तो राक्षस लोग, अभक्त लोग भक्तों को दुख देते हैं, तब कथा बनती है। हालांकि भक्तों को, भगवान को दुख किया, सुख किया, परे ये सारा अध्याय कैसे भगवान और भगवान के भक्त आध्यात्मिक जगत में स्थिर, या तो आध्यात्मिक चेतना में स्थिर रहते हैं, ये कथा है। ये कथा है तपित जीवात्माओं का एकमात्र सोलस, एकमात्र शेल्टर, एकमात्र सहारा, इन भगवान के अद्भुत चरित्र का गान करते हुए तप्त जीवात्मा आध्यात्मिक स्तर पर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, वो सारे, ये सारी कथा उनके ऊपर ही है। कैसे आ जाते हैं भगवान के भक्त और तपित जीवात्माएं, कैसे इन तापों से मुक्त होकर आध्यात्मिक स्तर पर आ जाते हैं, अर्थात आनंद के स्तर पर, प्रेम के स्तर पर आ जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ये आध्यात्मिक स्तर पर हैं, और भगवान श्री कृष्ण के शरीर में और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, अर्थात वो आध्यात्मिक स्तर पर है। अर्थात विषमता तब पैदा होती है जब हम आत्मा शरीर से अलग समझते हैं। शरीर भौतिक है, आत्मा आध्यात्मिक है, तो वहां ही विषमता होगी। तो जैसे हम विषम कैसे होते हैं कि मैं आत्मा हूं और मैं शरीर अलग समझता हूं, और हमारा शरीर अलग है ही, भौतिक शरीर हम समझते हैं। सही ढंग में देखा जाए तो आत्मा का स्वरूप शरीर आध्यात्मिक शरीर है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण, उनका आत्मा और उनका शरीर, उसमें भेद नहीं, एक ही है, विषमता नहीं। इसीलिए भगवान सम है, विषम नहीं है। समम चरंति सर्वत्र, ये यहाँ सुखमुनि कह रहे हैं। हे राजन, पूर्व काल में जब महाराज युधिष्ठिर राजसी यज्ञ कर रहे थे, तो महर्षि नारद ने उनके पूछे जाने पर कुछ ऐतिहासिक कथा कही थी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असुरों का वध करते समय भी कितने निष्पक्ष रहते हैं, इस संबंध में उन्हें एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया था। उदाहरण क्या था कि भगवान श्री कृष्ण और उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। तो विषमता तब होती है उत्पन्न जब शरीर और भौतिक शरीर और आध्यात्मिक शरीर में भेद अलग। तो भगवान का शरीर भौतिक है नहीं, आध्यात्मिक शरीर है, और शुद्ध भक्तों का शरीर भौतिक शरीर होता नहीं, इसलिए भक्त भी विषम होता है, उनके लिए सुख क्या दुख क्या। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती सम सर्वेश भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। सम सर्वेश भूतेषु न द्वेष्यस्ति न प्रिया, उनका कोई देशपात्र नहीं होता, उनका कोई प्रिय नहीं होता, क्योंकि उनको विषमता कैसे हो सकती है। उनका शरीर भौतिक शरीर नहीं, उनकी चेतना भौतिक चेतना नहीं, उनकी बुद्धि भौतिक नहीं, मन बुद्धि अहंकार भौतिक नहीं, आध्यात्मिक, और आत्मा भी आध्यात्मिक, तो इस स्तर पर विषमता नहीं रहती। और भगवान तो हमेशा आध्यात्मिक स्तर पर है ही, इसलिए उनको विषमता कैसे। समम चरन्ति सर्वत्र, भगवान के लिए सब समान है, जब शिवात्मा है। जीवात्माएं अपना स्वभाव चेतना बदल देते हैं, इसलिए उनको विषमता है भौतिक जगत है। तो ये सारा अध्याय हमें बताता है कि भगवान श्री कृष्ण विषम नहीं है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, यह अत्यंत अद्भुत है कि असुर शिशुपाल अत्यंत ईशाल होते हुए भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर में लीन हो गया। यह साहिज्य मुक्ति बड़े बड़े आध्यात्मवादियों के लिए भी दुर्लभ है, तो फिर भगवान के शत्रु को यह कैसे प्राप्त हुई मुक्ति। तो ये महाराज युधिष्ठिर नारद मुनि को एक प्रश्न पूछ रहे हैं, सेम सवाल, एक ही सवाल जो परीक्षित महाराज ने सुखमुनि को पूछा, और यहाँ वही सवाल युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि को पूछ रहे हैं कि यहाँ देखा जाता है कि चेदिराज शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण का इतना बड़ा इंसल्ट, भगवान श्री कृष्ण को 100 गाली 99 गाली तक भगवान सुन रहे, विषम रहे, और 100 गाली के बाद भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन से उनका सर विच्छेद करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने अपनी नजरों से देखा कि शिशुपाल का जो आत्मा है, शिशुपाल आत्मा, वो भगवान श्री कृष्ण में, उनके शरीर में विलीन हो गया। यह साहिज्य मुक्ति बड़े बड़े साहिज्य विलीन हो जाना, साहिज्य मुक्ति बड़े बड़े आध्यात्मिक वादियों के लिए भी दुर्लभ है, तो फिर भगवान के शत्रु को यह कैसे प्राप्त हुआ। तो यहाँ युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण को विषम बताते हैं कि एक शत्रु, गाली देने वाला शत्रु, और वो भी भगवान वहाँ लवाद करने गए थे, मंत्री बन के या तो दूत बन के गए थे, और वहाँ दुर्योधन की सभा में चेदिराज शिशुपाल भगवान को गालियां निकालना बड़ा इंसल्ट, भगवान ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, विषम रहे, और उनका वध करने पर भी, उनको मारने पर भी उनको अपने में संभाल लिया, जैसे कि एक उनके शरीर का एक अविभाज्य अंग ना हो। तो ये विडम्बनम, विडम्बनम बहुत बड़ा आश्चर्य है, बहुत बड़ा आश्चर्य है। तो हे मुनि, महामुनि, हम सभी भगवान की इस कृपा का कारण जानने के लिए उत्सुक हैं। नारद मुनि, मैंने सुना है कि प्राचीन काल में वेन नामक राजा ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की निंदा की थी, फलस्वरूप सारे ब्राह्मणों ने उसे बाध्य किया कि वह नरक में जाए। शिशुपाल को भी नरक जाना चाहिए था, तो फिर यह भगवान के शरीर में किस तरह लीन हो गया? तो अपने बाल्यकाल से प्रारंभ से ही ये शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण का निंदक रहा। भगवान श्री कृष्ण की निंदा करना बाल्यकाल से ही शुरू किया था, ईर्ष्या करना और दंत वक्र भी, तो दोनों जय विजय हैं, शिशुपाल और दंत वक्र। ये भगवान श्री कृष्ण की लीला में और रामचंद्र भगवान की लीला में रावण और कुंभकर्ण, और यहाँ आज की कथा में हिरण्याक्ष एंड हिरण्यकशिपु। तो हम हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की कथा सुन रहे हैं। तो शिशुपाल और दंत वक्र दोनों ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण की बारंबार निंदा करते थे और नारकीय जीवन के घन अंधकार में उनका प्रवेश होना चाहिए था। तो यह सचमुच इससे अत्यधिक चकित और इससे अत्यधिक विडम्बनन क्या हो सकता है? कथम तस्मिन् भगवती दुरवग्राह्य दामने पश्यताम सर्वलोकानाम लयम ईशतु अंजसा। यह कैसे संभव हो पाया कि शिशुपाल तथा दंत वक्र अनेक महापुरुषों के देखते देखते ही उन कृष्ण के शरीर में सरलता से प्रविष्ट हो सके, जिन भगवान की प्रकृति को प्राप्त कर पाना कठिन है? ये कैसे शक्य हुआ? ये हमारा संदेह है। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर की विनती सुनकर अत्यंत शक्तिशाली गुरु नारद मुनि अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि वे हर बात को जानने वाले हैं। इस तरह उन्होंने यज्ञ में भाग ले रहे सभी व्यक्तियों के समक्ष उत्तर दिया। नारद उवाच, नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, निंदा तथा स्तुति, मान तथा सम्मान का अनुभव अज्ञान के कारण होता है। बद्ध जीव का शरीर भगवान द्वारा अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से इस जगत में कष्ट भोगने के लिए बनाया गया है। तो बद्ध जीवात्मा अपना शरीर और अपना आत्मा अलग समझता है, तो द्वंद हो गया, इसलिए दुख। और एक भक्त, शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी अपना शरीर और अपना आत्मा एक बना लेते हैं, अर्थात दिव्य बना लेते हैं, अर्थात आध्यात्मिक बना लेते हैं। आध्यात्मिक देह, आध्यात्मिक आत्मा एक। तो जब देह और देही आत्मा दोनों जब एक बन जाते हैं, तब द्वंद्व छूट जाता है। गाली या श्लाघा, सुख या दुख, ठंडी या गर्मी, मान या अपमान, भौतिक जगत, द्वंद्व, तो ये द्वंद्व मिट जाता। तो भगवान में द्वंद्व है नहीं, भगवान अंतर बहिर अवस्थित, अंतर और बहि एक ही है भगवान के लिए। बाहर क्या, अंदर क्या, भगवान अद्वैत एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट, अद्वैतम, अच्युतम, अनादि अनंत रूपम, ఆద్యం పురాణ పురుషం నవజౌవనం చ వేదేసు దుర్లభమదుర్లభమాత్మభక్తో గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. అద్వైత హై భగవాన్, భగవాన్ కా సబ్ కుచ్ అద్వైత హై. అద్వైత ద్వైత దో అ మీన్స్ ఏక్, శరీర ఆత్మా ఏక్ భగవాన్ కా. ఔర్ శుద్ధ భక్తో కా భీ శరీర ఔర్ ఆత్మా ఏక్, మన బుద్ధి అహంకార ఔర్ ఆత్మా ఏక్, స్థూల్ శరీర ఆత్మా ఏక్, స్థూల్ సూక్ష్మ ఔర్ కారణ దేహ తినో దేహ ఏక్ దేహ. तो द्वंद मिट गया, द्वंद तब उत्पन्न होता है जब हम सारी चीजें शरीर के संबंध में समझते हैं, लेते हैं, तो द्वंद उत्पन्न होता है. ठंडी गर्मी दुश्मन, शरीर का दुश्मन, आत्मा का दुश्मन, को आत्मा का कॉन्स्टिट्यूशन एक है सच्चिदानंद, और हर एक आत्मा सच्चिदानंद है, इसलिए हर एक आत्मा एक है, इसलिए द्वंद नहीं. भौतिक जगत मीन्स द्वंद, भौतिक जगत द्वंद क्यों उत्पन्न किया गया, क्योंकि जीव को भौतिक भोग भोगने की इच्छा हुई, इसलिए भौतिक जगत द्वंद पैदा करना पड़ा. आध्यात्मिक भोग, आध्यात्मिक इच्छा होती तो आत्मा है, कृष्ण परमात्मा है, उनका जगत आध्यात्मिक है, भौतिक जगत की जरूरत नहीं है, और वहां द्वंद नहीं है. आध्यात्मिक कृष्ण लोक भगवान का जो लोक है, भगवान का धाम है, उसमें डुअलिटी नहीं है, द्वंद नहीं. एक ही पेड़ पर आपको खरबूजा मिलेगा, एप्पल मिलेगा, सफरजन मिलेगा, बड़ा क्या बोले कद्दू मिलेगा, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, ऑल बेरी, सब बेरी ऑन द सेम ट्री, एब्सोल्यूट जगत. और ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, सब बेरी टेस्ट है, जो आपको चाहिए, जो आपको चाहिए, द्वंद नहीं है. तो भगवान श्री कृष्ण पूर्ण तरह ये आध्यात्मिक गण, आध्यात्मिक पूर्ण आध्यात्मिक, उनके लिए बाहर कुछ नहीं, अंदर कुछ नहीं, सेम अंदर बाहर एक एक ही चीज आध्यात्मिक, सच्चिदानंद, सनातन, पूर्ण ज्ञानमय, पूर्ण आनंदमय सच्चिदानंद. तो ऐसे भगवान के लिए निंदा और स्तुति, अपमान तथा सम्मान एक ही चीज है. बद्ध जीव का शरीर भगवान द्वारा अपनी बहिरंगा शक्ति से बना है, इसलिए आत्मा और शरीर अलग है, इसीलिए द्वंद. तो वैषम्यता खत्म, भगवान में और शुद्ध भक्तों में वैषम्य नहीं होता. हिंसा तद अभिमानेन दंड पारुष्ययो यथा वैषम्य यह भूतानां ममाहम इति पार्थिव. हे राजन, देहात्म बुद्धि के कारण बद्ध जीव अपने शरीर को ही आत्मा मान लेता है, और अपने शरीर से संबंध हर वस्तु को अपनी मानता है. ध्यान दो, द्वंद शरीर और आत्मा अलग कर लेता है, क्योंकि उसे जीवन की यह मिथ्या धारणा रहती है, अतएव उसे प्रशंसा तथा अपमान जैसे द्वंद्वों को भोगना पड़ता है. हे राजन, देहात्म बुद्धि के कारण बद्ध जीव अपने शरीर को ही आत्मा मान लेता है, आत्मा भूल जाता है और मैं शरीर हूं, हो गया द्वंद स्वरूप पहले से ही, मैं हूं कुछ समझ बैठा कुछ और, गलती हो गई, बहुत बड़ी पहली गलती, ये गलती हो गई। हे राजन, देहात्म बुद्धि के कारण बद्ध जीव अपने शरीर को ही आत्मा मान लेता है और अपने शरीर से संबंध हर वस्तु को अपनी मानता है, क्योंकि उसे जीवन की मिथ्या धारणा रहती है, तो उसे प्रशंसा तथा अपमान जैसे द्वंद्व को भोगना पड़ता है। तो भगवान में एक द्वंद्व है नहीं, आनंद घन, सच्चिदानंद घन भगवान है, तो भगवान में द्वंद्व नहीं है और बद्ध जीव में ये द्वंद्व है। क्या द्वंद्व? द्वंद्व क्या है? अरे चार पांच लोग बोल रहे हैं यही आपका प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम, जो मैं लास्ट वन आवर से समझा रहा हूं कि भगवान में द्वंद्व नहीं, शरीर और आत्मा में भेद नहीं है, और यहाँ देहात्म बुद्धि जीव तो वैषम्य, भौतिक जगत में वैषम्य है, विषमता। क्या देह में आत्मबुद्धि, देह आत्मा, देहात्म बुद्धि है? तो हे राजन, देहात्म बुद्धि के कारण बद्ध जीव अपने शरीर को ही आत्मा मान लेता है। क्या मान लेता है? किसको? वेरी गुड। हम कौन है? नहीं बोले वो, ये एबीसीडी हर कथा में हमें करनी ही होगी, हर कथा में। ये पहले एबीसीडी हमें घुटनी पड़ेगी, एबीसीडी, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, देहात्म बुद्धि गई, द्वंद गया, आध्यात्मिक स्तर पर आ गए, आनंद ही आनंद, ये हम सिखा रहे हैं। ये कथा बद्ध जी अपने शरीर को ही आत्मा मान लेता है और अपने शरीर से संबंध हर वस्तु को अपनी मानता है। मेरी साड़ी सुंदर लगती है, मेरी धोती बड़ी किनारी है, मेरे बाल सुनहरे हैं, मेरी काली और मेरी लाली द्वंद्व स्वरूप, द्वंद्व सुख, वो मुझे तुमने बदसूरत बेसूरत कहा। भैया आत्मा तो सुंदर है, आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, वो कैसे बदसूरत हो गया? लेकिन दुख क्यों? दुख शरीर को बदसूरत का, आत्मा तो सूरत है, खूबसूरत। तो देहात्म बुद्धि चूंकि उसे जीवन की मिथ्या धारणा रहती है, अतएव उसे प्रशंसा तथा अपमान जैसे द्वंद्वों को भोगना पड़ता है। प्रशंसा या अपमान, मान अपमान, ठंडी गर्मी, विषमता, सब दुखों का कारण ये विषमता। सब दुखों का कारण की जड़ है मैं ये शरीर हूं। सब दुखों का कारण क्या है? भूल हो गया सुर, यहां से सब दुखों का, मैं आत्मा हूं, आध्यात्मिक हूं, कृष्ण का अंश हूं, कृष्ण भगवान के साथ मैं मौज करने वाला हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, शिवो हम, अहम ब्रह्मास्मि, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है, सही में एक है, मैं और कृष्ण एक है। कैसे? क्योंकि वो सच्चिदानंद, मैं सच्चिदानंद, वो विषमता है कि वो सबसे बड़े से बड़े हैं, छोटे से छोटे हैं, लेकिन मैं छोटे से छोटा हूं, ये विषमता, ये भेद है, अचिंत भेद अभेद तत्व। तो ये विषमता के कारण परीक्षित महाराज ये प्रश्न कर रहे हैं और युधिष्ठिर महाराज ये प्रश्न कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि को प्रश्न कर रहे हैं और परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान सम होते हुए विषम क्यों हुए, अपने भक्त इंद्रादि देवताओं का पक्ष क्यों ले रहे हैं और राक्षसों की पिटाई क्यों कर रहे हैं, उनको तो विषमता नहीं होनी चाहिए, राक्षस और भक्त उनके लिए समान होने चाहिए, तो विषमता क्यों। तो उनका जवाब मैंने 10 बार कहा कि भगवान के शरीर में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, इसलिए वो दोनों सच्चिदानंद है, वो दोनों दिव्य शरीर और आत्मा भगवान का दोनों दिव्य है, इसलिए उनमें द्वंद्व नहीं है, इसलिए उनमें विषमता नहीं है, उनके भगवान को मान अपमान ठंडी गर्मी भक्त अभक्त विषमता नहीं है, लगता है ऐसा कि विषमता है, तो विषमता लगता है ऐसा इनके ऊपर कथा, विषमता लगता है क्यों, क्यों ऐसी कथा आगे चलाने की जरूरत क्या, विषमता नहीं है तो इसीलिए जरूरत है। उनका जवाब भी मैंने दिया कि भगवान कोई राक्षसों को मारने की क्या जरूरत है, क्यों राक्षसों का क्यों मारते, मैंने आगे जवाब दिया, किसी को याद रहा नहीं रहा यानी बड़ी, क्योंकि इससे भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में जो लीलाएं होती हैं, उन लीलाओं का गुणगान करते हुए सुनते हुए श्रवण करते हुए जीव तप्त जीवित तप्त जीवन से मुक्त होता है, आनंदमय होता है, आनंदित होता है, ये कथाओं का श्रवण करने से जीव का कल्याण हो जाता है, इसलिए भगवान ये लीलाएं करते हैं, विषमता लगता है, भगवान विषम नहीं है, लेकिन हमारे लिए कथा कैसे उत्पन्न होगी, अगर हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष भगवान ने मारा नहीं होता, और वो भी प्रेम से, ऐसा नहीं कि विषमता से, अपने में अपनी मात जैसी मुक्ति दी, पुतना जैसी अहो बकियम स्तनकाल कूटम वगैरह, तो भगवान लगता है कि विषम है लेकिन विषम नहीं है। तो दो सवालों का दो जवाब मैंने बहुत बार गुनगुनाया, ठीक है याद रहा ना। तो हे राजन, देहात्म बुद्धि के कारण बद्ध जीव अपने शरीर को ही आत्मा मान लेता है और अपने शरीर से संबंध हर वस्तु को अपनी मानता है, चूंकि उसे जीवन की मिथ्या धारणा होती है, अतएव उसे द्वंद्व होता है, इसलिए उनको दुख होता है। सुना पक्का। तो देहात्म बुद्धि के कारण बद्ध जीव सोचता है कि जब शरीर नष्ट हो जाता है तो जीव भी नष्ट हो जाता है। बद्ध जीव क्या सोचता है, एवरीथिंग एंड्स, तो ईट ड्रिंक एंड बी मैरिड फॉर हू हैज सीन द नेक्स्ट लाइफ, है ना, खाओ पियो मौज करो, अगला जीवन किसने देखा है, क्या होगा, अभी मौज उड़ाओ, तो उसमें फंस जाता है जी। देहात्म बुद्धि के कारण बद्ध जीव सोचता है कि जब शरीर नष्ट हो जाता है तो जीव भी नष्ट हो जाता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ही परम नियंता तथा समस्त जीवों के परमात्मा है, चूंकि उसका कोई भौतिक शरीर नहीं होता, अतएव उनमें मैं तथा मेरा भाव नहीं होता, चूंकि उनका कोई भौतिक शरीर नहीं होता, किसका भौतिक शरीर नहीं होता, और आपका श्योर आपका भी भौतिक शरीर नहीं है, अगर आप आध्यात्मिक बना लो आध्यात्मिक बना लो। तो अतएव उनमें क्या होता है, मैं और भेद हो गए, मैं और आप, मैं और मेरा, मैं और मेरा व्याशासन, मैं और मेरी गाड़ी, विषमता भेद। लेकिन आप आत्मा के स्तर पर शरीर और अपना सब कुछ आत्मा की तरह हम मान बैठे, क्योंकि भगवान की ये शक्ति है भौतिक जगत, और शक्ति शक्ति मतो अभिन्न, शक्ति शक्ति मतो भिन्न नहीं है, भगवान से भौतिक जगत भिन्न नहीं है। भिन्न कौन बनाता है फिर, हम, मैं और मेरा, मैं और द्वंद्व शुरू हो गया। वहां से पहली भूल मैं और मेरा, पहली भूल मैं और मेरा शरीर, पहली भूल, बाद में सब कुछ भूल रहेगा, क्योंकि पहले से हमने विषमता पैदा कर दी। जैसे भ्रांत धारणा नहीं होती, अतएव यह सोचना सही नहीं है कि जब उनकी निंदा की जाती है या उनकी स्तुति की जाती है तो वे पीड़ा या हर्ष का अनुभव करता है, पीड़ा या हर्ष का अनुभव करता है कब, उनकी स्तुति या निंदा करते हैं। जैसे कोई सुंदर 16 साल या 20 साल की खूब सुंदरी है और उनको कहूँ मैं यू रैचेड अगली ओल्ड रिंकल लेडी, वेर आर यू गोइंग, चप्पल उठाएगी क्यों, ऐसा क्यों करेगी, क्योंकि उन्हें मैं और मेरा समझा, मैं और मेरा शरीर, और मैं सब कुछ शरीर के बारे में कह रहा हूं, ओल्ड रैचेड रिंकल सब कुछ शरीर का वर्णन है। मैं क्या कहता हूं, तू आत्मा ओल्ड रैचेड अगली, ऐसा तो कह नहीं रहा। तो वो भेद समझती कि मैं और मेरा शरीर, मेरा शरीर में अगली कहा चप्पल, उनको अपमान दुख विषमता। भगवान में ये नहीं है, भगवान को तो आप कदरूपा कहो, बेरूप कहो, काला कहो, गोरा कहो, लंबा कहो, ऊंचा कहो, सब कुछ है भगवान, सब कुछ है, काला भी है, गोरा भी है, लंबा भी है, टूका भी है, छोटा भी है, बड़ा भी है, अणियो अणियात महतो महियात, विषमता का है। लेकिन बद्ध जी मैं और मेरा वैसी जैसी भ्रांत धारणा नहीं होती, अतएव यह सोचना सही नहीं है कि जब उनकी निंदा की जाती है या उनकी स्तुति की जाती है तो वे पीड़ा या हर्ष का अनुभव करता है, ऐसा कर पाना उनके लिए असंभव है। इस प्रकार उनका न कोई शत्रु है और न कोई मित्र, जब वे असुरों को दंड देते हैं तो उनकी भलाई के लिए ऐसा करते हैं, असुरों को दंड देते हैं तो असुर की भलाई के लिए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष राक्षसी शरीर, राक्षसी बुद्धि, राक्षसी योनि, उसमें कब तक पड़ा रहेगा, दुख है। इससे अच्छा है भगवान उनको मुक्त करके अपने आप में अपना बना ले, तो उनके ऊपर कृपा है। राक्षसों को मारना ये भगवान की राक्षसों के ऊपर कृपा है, कृपा है, चाहे वो माने चाहे वो ना माने, लेकिन दिव्य दृष्टि से कृपा ही है, दिव्य दृष्टि से कृपा है। दंड देते हैं तो उनकी भलाई के लिए ऐसा करते हैं, राक्षस लोग नहीं समझते कि मेरी भलाई के लिए भगवान कर रहे हैं। शिशुपाल एक गंदा शरीर छोड़ के भगवान का शरीर मिला उनको, तो क्या विषमता है कि उपकार है, शिशुकाल उपकार है। पुतना राक्षसी कालकुट जहर हलाहल जहर अपने स्तनों पर लगा के भगवान को स्तनपान करा के मारने के लिए गई, और भगवान ने उनके स्तन से उनका प्राण तक चूस लिया, मर गए। तो भागवत में तीसरे अध्याय में अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिंगाशया अप्य आप्यय असाध्वी लेबे गतिम धात्री, धात्री की गति, माता की गति उनको दी। जसोदा मैया को जो गति दी वो गति पुतना को दी। तो क्या वो उपकार है कि ये विषमता है? उपकार लगता है कि भगवान विषम है, मार दी, मौसी होके आई और मार दिया, मामा कंस को मार दिया। नहीं, मामा कंस को राक्षसी योनि से बचाया, जीवात्मा मामा को राक्षस योनि से मुक्त किया। तो विषमता नहीं है, पर उपकार है, उपकार। और अगर राक्षस लोग ये भी समझे कि ये मुझे मार दिया, फिर भी भगवान ने उनको मुक्ति प्रदान की, अपना धाम ब्रह्म ज्योति विषमता तोड़ दी, द्वंद तोड़ दिया। जब असुरों को दंड देते हैं तो उनकी भलाई के लिए ऐसा करते हैं, और जब भक्तों की स्तुतियां स्वीकार करते हैं तो वह अपने कल्याण के लिए होता है। वे न तो स्तुतियों से प्रभावित होते हैं न निंदा से, न निंदा। एक कथा एज इट इज हो रही है, एज इट इज, कोई तोड़ मरोड़ नहीं और कोई खुशामत वाली कथा नहीं है, और पैसा चढ़ावा आपको चढ़ाना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल कल्याणकारी कथा हो रही है। तो भगवान स्तुति या निंदा, एक भगवान के लिए एक, भक्तों के लिए भी, भक्तों के लिए भी एक। निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो एन केन चित। सो निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट एन केन चित भक्त, 12th चैप्टर गीता। तो भक्त भी सम, भगवान भी सम, भगवान को दुख नहीं, भक्त को दुख नहीं। अतएव यदि कोई बद्ध जीव किसी भी तरह शत्रुता या भक्ति भय स्नेह तस्मात द्वैर अनुबंधेन वैरेण भयेन वा स्नेहात कामेन वा युञ्जता कथचित न इक्षते पृथक। तस्मात, इसलिए, अतएव, अतएव यदि कोई बद्ध जीव किसी भी तरह शत्रु या भक्ति भय स्नेह या विषय वासना द्वारा इनमें से सभी या किसी एक के द्वारा अपने मन को भगवान पर एकाग्र करता है तो फल एक जैसा मिलता है, एक जैसा, क्योंकि अपनी आनंदमय स्थिति के कारण भगवान कभी भी शत्रुता या मित्रता द्वारा प्रभावित नहीं होते। कोई शराबी मद प्रमत्त हो चुका है, प्रमत्त हो चुका है, उनको आप गाली दो या स्तुति करो, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा उनको? क्योंकि वो इंटॉक्सिकेटेड है, नशे में है, नशे में उनको निंदा स्तुति कुछ। तो उसी तरह भगवान के भक्त और भगवान सच्चित आनंद स्वरूप इनमें स्थित रहते हैं। चेतना सच्चित आनंद से आनंदमय अभ्यासात आनंदमय रहते हैं, इसलिए उनको शत्रु मित्र द्वारा कोई प्रभावित नहीं होते कि मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है। भगवान के भक्तों के लिए भी न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। नारद मुनि ने आगे बताया, नारद मुनि ने आगे बताया, मनुष्य को भक्ति द्वारा भगवान के विचार में ऐसी गहन तल्लीनता प्राप्त नहीं हो सकती जितनी कि उनके पति शत्रुता के माध्यम से, ऐसा मेरा विचार है। निष्कर्ष नारद मुनि क्या कहते हैं यहाँ कि भक्ति से जो तन्मयता आती है भगवान में उससे भी कई गुणी ज्यादा दुश्मनावट से भगवान में तल्लीनता आती है। यथा वैरानुबंधे न मर्त्य तत्मयता या न तथा भक्ति योगे न इति में निश्चिता मति। मेरी निश्चित मति, मेरा निष्कर्ष यह है, मेरा निष्कर्ष क्या है कि जितनी तल्लीनता वैर भाव से शत्रुता से आती है उतनी तल्लीनता भक्ति द्वारा नहीं आती। तो क्या हम भगवान के शत्रु बन जाए? नारद मुनि ये कह रहे हैं भगवान को गालियां देना चाहिए तो उनमें तल्लीनता। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। प्रेम भक्ति उत्तम प्रेम अनुकूल कृष्णा को अनुकूल होके अनुकूल सेवा। ज्ञान कर्माद अनावृतम ज्ञान मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति मुक्ति मिश्रा भक्ति भुक्ति मिश्रा भक्ति अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। उत्तम भक्ति है। तो यहाँ नारद मुनि कह रहे हैं कि वैर भाव से जितनी कृष्ण में तल्लीनता आती है तन्मयता, यहाँ शब्द है तत्मयताम तत्मयताम तल्लीन तत्लीन तन्मय उनमें लीन उनमें मय उन तल्लीन। तो जितनी वैर भाव से तन्मयता आती है उतनी भक्ति से नहीं आती। फिर से मैं पढ़ता हूँ, ये आपको पढ़ना चाहिए, आगे यहाँ बताते हैं। तो यहाँ उदाहरण दिया गया कि जैसे कीट पेश बनाता है, कीट पेशक कृता रुद्धा, एक मधुमक्खी भृंगी द्वारा दीवार के छेद में बंदी बनाया गया एक कीड़ा सदैव भय तथा शत्रुता के कारण उस मधुमक्खी के विषय में सोचता रहता है और बाद में मात्र चिंतन से स्वयं मधुमक्खी बन जाता है। ब्रह्म रूप होके भगवान की उपासना। परब्रह्म श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए ब्रह्म हो जाना, आध्यात्मिक हो जाना, शुद्ध भक्त हो जाना, शुद्ध आत्मा के स्तर पर हो जाना। तो ये बहुत सुंदर उदाहरण है। मैंने कई बार ये उदाहरण दिया है कि एक मधुमक्खी होती है तो वो एक कीड़ा पकड़ के लाती है और कीड़ा को अपने घर में वो बंदी बना लेती है। मधुमक्खी कीड़े को अपने घर में जेल में, मधुमक्खी कीड़े को अपने घर में बंदी बना देती और जब भी मधुमक्खी वहां आएगी जोर से काटेगी कीड़े को, तो कीड़े को बहुत दुख होता है। तो कीड़ा हमेशा ध्यान करता रहता है, अभी आएगी मुझे काटेगी मुझे बहुत बड़ा दुख होगा, मेरा बस नहीं चलेगा, इधर उधर नहीं हो सकता, बस काटेगी और मुझे दुख होगा ही और सहना पड़ेगा। हमेशा उनका ध्यान करती रहती है कीड़ा, हमेशा मधुमक्खी का ध्यान करता रहता है। तो अंत में क्या हो जाता है कि मात्र चिंतन से स्वयं मधुमक्खी बन जाता है। क्या बन जाता है? तो डर से हमेशा उनका ध्यान करते आए कीड़ा मधुमक्खी का। तो मधुमक्खी का ध्यान करते करते मधुमक्खी का कीड़ा, जो कीड़ा वो पकड़ के लाई थी वो मधुमक्खी बन जाता है। उसी तरह हम आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं शुद्ध आत्माएं जो भी आत्माएं, भगवान श्री कृष्ण का हमें चिंतन हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम तन्मयता से तल्लीन होके मन उनमें लगा के मन मना मन मनस्का कृष्ण में मन तल्लीन। तो ऐसा करते 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 हम कृष्णा ब्रह्म परम ब्रह्म और हम भी ब्रह्म हो जाएंगे। हम कृष्णा आध्यात्मिक स्तर पर, हम भी आध्यात्मिक स्तर, कृष्णा सच्चिदानंद हम भी सच्चिदानंद। कीड़ा मधुमक्खी हो जाता है, मधुमक्खी का चिंतन करते करते कीड़ा क्या हो जाता है, उसी तरह हम श्री कृष्ण का चिंतन करते करते क्या हो जाएंगे, छोटे श्री कृष्ण हो जाएंगे। श्री कृष्ण सच्चिदानंद हम भी, अर्थात हम आध्यात्मिक स्तर पर स्थित हो जाएंगे। श्री कृष्ण आध्यात्मिक स्तर पर, हम भी आध्यात्मिक स्तर पर, और उन आध्यात्मिक स्तर पर शत्रु कौन मित्र कौन, मान क्या अपमान क्या, ठंडी क्या गर्मी क्या, अपना क्या पराया क्या। सर्वत्र स्फुरायते निज इष्ट स्फूर्ति, स्थावर जंगम ना देखे तार मूर्ति। सर्वत्र स्फुरायते निज इष्ट स्फूर्ति, शुद्ध भक्त स्थावर और जंगम आकार विकार या अच्छा बुरा नहीं देखता, सब में उनकी सर्वत्र स्फुरायते निज इष्ट स्फूर्ति, सर्वत्र उनको क्या अपने भगवान कृष्ण की मूर्ति का दर्शन होता है, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होता है। सर्वत्र स्फुरायते निज इष्ट स्फूर्ति, सावर जंगम ना देख, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने सुनिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शन। समदर्शन पंडित में, शूद्र में, गाय में, कुत्ते में, हाथी में, समदर्श आत्मा अंदर देखता है। स्थावर जंगम शरीर नहीं देखता, स्थावर जंगम ना देखे तार मूर्ति, मूर्ति का अर्थ शरीर नहीं देखता कि सुंदर स्त्री है ये, सुंदर पुरुष है ये, कदरूपा रूपा दिस दैट। अंदर सीधा सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण और आत्मा दोनों को देखता है, ऊपर का कुछ नहीं देखता। ऐसे भर बाजार में जाते हुए शुद्ध भक्त उनको कोई इनडिफरेंट इंग्लिश में बोलते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, सुंदर है यहाँ ही मिल रहा है वहां वो मिल रहा है, सीधा भगवान के साथ वो बाजारों में से सीधा निकल जाता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई भौतिकवादी यंग मटेरियलिस्ट बाजारों में से निकलता है तो फाटी हुई आंखों से उनको सारे भेद नजर में आते हैं, और भक्त भगवान को देखता है सब जगह सीधा, समाधि वस्तु समाधि ग्रस्त। कीर्तनीय सदा हरि, हमें कृष्ण में वो कृष्ण में तल्लीन होता है। तो इसी प्रकार यदि सारे बद्ध जीव किसी तरह सच्चिदानंद विग्रह से कृष्ण का चिंतन करें तो वे पापों से, वे भगवान को चाहे पूज्य रूप में माने या शत्रु रूप में माने कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान शत्रु भी है और भगवान पूज्य भी है, और भगवान पिता भी है, भगवान माता भी है, भगवान सब कुछ है। मम सर्वम मम देव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वम। तो माता भगवान हो गए, पिता भी भगवान, ये कैसे हो सकता है। तो भगवान का दिव्य गुण है, वही भगवान माता है पिता है, वे भगवान को चाहे पूज्य रूप में मानो या शत्रु रूप में, निरंतर उनका चिंतन करते रहने से उन सबों को आध्यात्मिक शरीर की पुनः प्राप्ति हो जाएगी। तो आध्यात्मिक शरीर की पुनः प्राप्ति, अभी हमारा भौतिक शरीर है, हम द्वंद देख रहे हैं, हम गोरा काला सुंदर बेरूप बंद द्वंद, जो सब भक्ति भाव में शुद्ध भक्त हो गए तो पूज्य रूप में मानो या शत्रु रूप में मानो, निरंतर उनका चिंतन करते रहने से उन सबों को साले राक्षस हो या भक्त हो, उन सबों को शरीर की पुनः प्राप्ति हो जाएगी। कौन से शरीर की? आध्यात्मिक शरीर। कौन से शरीर की पुनः प्राप्ति होगी? आध्यात्मिक शरीर की। ठीक है, हम कथा सुन के चले जाएं घर, हा हो ये कथा नहीं होगी, हमें हमारा कल्याण कैसे हो, है ना, हमारा कल्याण। तो यहाँ क्या कहा गया है कि हमें हमेशा सदैव क्या करना है, कृष्ण का चिंतन मनन, और इन चिंतन करने से चाहे शत्रुभाव करो चाहे भक्ति भाव करो, चिंतन तो हमें क्या होगा, आध्यात्मिक शरीर की पुनः प्राप्ति का अर्थ है हमारा आध्यात्मिक शरीर था लेकिन अभी हमने भौतिक शरीर समझ लिया, तो ये श्री कृष्ण में हमारा चिंतन हमेशा मन रखने से, श्री कृष्ण का हमेशा चिंतन करने से हमें पुनः क्या हो जाएगा, हो गया छुट्टी, हो गया कल्याण, कल्याणमस्तु। बस एक चित एक एक बात करनी है, हमारा मन जो है चित्त है भगवान में कर देना है, बस हमेशा लगाए रखो, जैसे शिशुपाल ने रखा और मामा कंस ने भी, कब आएगा, कहाँ आएगा, कैसे आएगा, मारेगा मुझे, मारेगा, मैं उनको मार दूं, जन्म से ही मार दूं, गोकुल में मारने के लिए मासी सबको भेजा, मौसी, चिंतन हमेशा उनका चिंतन, तो ऐसी हमारी स्थिति हो जाए। कंठावरोधम स्मरणम कुतस्थ, हे भगवान अभी आपका चिंतन मैं कर सकता हूँ, मेरा शरीर मन बुद्धि बराबर चल रहे हैं और मेरी मति आप में है, इसलिए मेरा मृत्यु अभी ही हो, लेकिन जब मरण काल आएगा तो कफवात पित्त कंठावरोधन, कंठ रुद्ध जाएगा कफ पित्त वायु से, तो स्मरणम कुतस्थ, इसलिए कृष्णा त्वदीय पाद पंकज पंजरांतम, इसलिए कृष्णा मेरी मृत्यु अभी ही हो क्योंकि मेरा मन आप में लगा है, मेरा चित्त आप में लगा है, तो बस ये हमें चित्त हमारा मन भगवान कृष्ण में लगाए रखना है। कैसे? एक बंदी बनाए होड़ा कीड़ा मधुमक्खी जो उनको हर बार आते हुए काटते हैं तो उनमें मन लगाए रखती है कि चित्त लगाए रखती है, तो वो आगरे में क्या बन जाती है, मधुमक्खी। उसी तरह हमारा चित्त कृष्ण में रमे तो हम क्या भाव पाएंगे, क्या भाव हमें मिलेगा, कृष्ण भावना भाव, कृष्ण का भाव, कृष्ण का भाव हमें मिलेगा, कृष्ण की रूप हमें मिलेगा, कृष्ण का दिव्य स्वरूप, कृष्ण का दिव्य आध्यात्मिक स्वरूप हमें मिलेगा। वैसे तो हम आध्यात्मिक स्वरूप है ही, कृष्ण का स्वरूप हम है ही, ममेव अंशो जीवलोके, लेकिन अभी हमारे मन बुद्धि अहंकार आत्मा पर हमने कई आवरण लगाए हुए हैं, भौतिक आवरण, तो वो आवरण टूट जाएंगे और आध्यात्मिक शरीर की हमें पुनः प्राप्ति होगी। तो हमें केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयत्, कोई भी प्रकार से हमें हमारा मन कृष्ण में लगाए रखना है। तो कामात द्वेषात भयात स्नेहात यथा भक्त्या ईश्वरे मनः आवेश्य तत् अघम हित्वा भवः तत् गतिं गता। अनेकानेक व्यक्तियों ने अत्यंत एकाग्रता पूर्वक सहज भाव से कृष्ण का चिंतन करके तथा पाप पूर्ण कर्मों का त्याग करके मुक्ति प्राप्त की है। यह एकाग्रता काम वासनाओं, शत्रुतापूर्ण भावनाओं, भय, स्नेह या भक्ति के कारण हो सकता है। अब मैं यह बतलाऊंगा कि किस प्रकार से मनुष्य भगवान में अपने मन को एकाग्र करके कृष्ण की कृपा प्राप्त करता है। तो कोई भी तरीके से एन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवासी, एन केन कोई भी प्रकार से एरित वो रित जो रित कोई भी रित से मन कृष्ण में लग जाए, एकाग्र अत्यंत एकाग्र पूर्वक सहज भाव से कृष्ण का चिंतन करने लगे अपना मन, एन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयत्। तो एकाग्र भाव शत्रु साथे हो, काम वासना से हो, गोपियां काम वासना शत्रु, यहाँ शत्रु रूप चेदिराज और कई राक्षस भावनाओं, शत्रु की भावनाओं, भय से भगवान को याद करना, स्नेह से भगवान को याद करना या भक्ति के कारण हो सकता है। अब मैं ये बतलाऊंगा कि इस प्रकार मनुष्य भगवान के मन को एकाग्र करके कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। तो गोप्य कामाद भयात कंस द्वेषात चेद्यादय नृपा संबंधात वृष्णीय स्नेहात यूयम भक्त्या वयम विभो। वयम मीन्स हम सब मतलब कौन बोल रहे हैं? ये नारद मुनि। नारद उवाच, नारद मुनि ने कहा, नारद मुनि संदर्भ याद, कथा याद रखो, कौन बोल रहा है? नारद मुनि किसे कह रहे हैं? नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं कि गोप्य कामाद, गोपियों ने काम से भगवान श्री कृष्ण में चित हमेशा लगाए रखा, मन हमेशा लगाए रखता, मन मनस्का उद्धव को भगवान कहते हैं, उन गोपियों का मन मुझसे हटता नहीं और मेरा मन गोपियों में से हटता नहीं, इसलिए हे उद्धव आप व्रज में जाओ। गोप्य कामात भयात, भयात कंस, कंस भय से मुझे अभी मारे, मेरे अभी मृत्यु मुझे अभी मार देगा, भय से श्री कृष्ण में हमेशा मन रहता था उनका, गोपियों का काम से नहीं प्रेम से। काम ये भौतिक काम की बात नहीं है, प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है। उदो बंदगी इतनी सस्ती नहीं है। तो गोप्य कामात भयात कंसो द्वेषात चेदी चैद्य आदय चैद्य चेदिराज शिशुपाल। तो शिशुपाल ने कैसे अपना मन चित श्री कृष्ण में रखा? द्वेष नृपा संबंधात वृष्णेय और वृष्णी डायनेस्टी वृष्णी वंश, सारा वृष्णी वंश भक्त था, अंधक वृष्णी डायनेस्टी है, डायनेस्टी। तो ये सब डायनेस्टी भक्त डायनेस्टी है. डायनेस्टी का अर्थ है वंश. डायनेस्टी मीन्स वंश. तो ये सब वृष्णी वंश भगवान वार्ष्णेय बोलते हैं. वार्ष्णेय और वार्ष्णी. वार्ष्णी मीन्स वृष्णी में जिन्होंने जन्म लिया. तो वृष्णेय स्नेहात वृष्णी जन या यादवगण या आदेव डायनेस्टी यदु डायनेस्टी. स्नेहात यू यम मीन्स तुम पांडव. युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि कह रहे हैं यू यम तुम लोग स्नेह किया. पांडवों ने भगवान से स्नेह किया. और वयम मीन्स नारद मुनि कहते हैं हम जैसे ऋषि मुनि भक्तिया. हम जैसे ऋषि मुनियों ने भक्ति की और पांडव जैसे स्नेह किया. पांडवों ने भगवान से स्नेह किया. तो इनमें भगवान का चित्त स्नेह में चित्त और संबंध में चित्त भय में चित्त काम में चित्त भगवान में रखा. तो इससे इन सबों पर कृष्ण की कृपा. तो कथा को विराम देंगे. हरे कृष्ण.